اوكي، جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. आज बड़ी मसरूफियत रही है, तो आज क्या पढ़ाना था ये देख नहीं सका सका है आज। फिलहाल दो जो पिछला हमारा दर्स था जुमे के दिन, उसमें हमने तालिबन कहाँ तक पढ़ लिया, पेज नंबर 51 तक, नहीं 50 तक ना। हाँ, तो उसके अंदर जो एक इबारत थी जो कि आखिर में जिसपे थोड़ी बात करी थी, वो पेज नंबर 49 के ऊपर थी, इस किताब के अंदर ना, पेज नंबर 49 पे। और वो ये थी कि मानेईन ज़कात, हज़रत शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मानेईन ज़कात और मुद्दईये नबुवत मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसकी जमात को काफिर मुर्तद करार देकर उनसे जिहाद करने पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अनहुम का इजमा इसकी खुली हुई शहादत है कि अहले क़िबला जिनकी तकफीर ममनू है, उसका मफहूम ये नहीं, ठीक है, कि जो दीन का एक मुसल्लमा उसूल है कि जो अहले क़िबला हैं उनकी तकफीर नहीं की जाएगी, उनको काफिर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हजरत ने दो अहादीस जो है वो पहले नकल करके, उनकी एक्सप्लेनेशन करके फरमाया कि ये जो अहले क़िबला की तकफीर ना करने का उसूल जो है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है, इस उसूल का इसका ये मफहूम नहीं है कि जो क़िबले की तरफ मुंह करके, जो क़िबले की तरफ मुंह कर ले या नमाज पढ़ ले, उसको किसी अकीदा बातिला की वजह से भी काफिर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो अब इससे हमने एक अपने लिए क्या हमने उसूल डिराइव किया था, हस किया था, वो अगर आप में से कोई बता दे, क्योंकि ये तो क्लास है, ये बयान तो है नहीं जुमे की तरह का, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर तो फिर आप भी सवाल कर सकते हैं, हम भी सवाल कर सकते हैं दौरान क्लास आपसे। तो ये जो जुमला हमने पढ़ा था कि इसका मफहूम ये नहीं कि जो किबले की तरफ मुंह कर ले या नमाज पढ़ ले, उसको किसी अकीदा बातिला की वजह से भी काफिर ना कहा जाए, तो इसका हमसे क्या ताल्लुक है, यानी हम इससे क्या सबक अखज करते हैं अपने लिए, या क्या उसूल अखज करते हैं अपने लिए, तो वो अगर आप में से कोई बता दे। कुछ रिकॉल करें अगर उस बयान को, आखिर में काफी कुछ लोगों ने कहा भी कि बड़ा जलाली बयान था वो, जलाल के अंदर सब कुछ। जी, तो चने किसी ने जवाब दिया है डायरेक्ट मैसेज में, इन्होंने दिया है कि कोई और ना पढ़ सके इनका जवाब, तो हम क्या करें इसका, उसको कॉपी करके अगर पेस्ट कर दें ताकि बाकी लोग भी पढ़ लें, ठीक है। तो हम इसको एवरीवन के ऊपर जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं ताकि सबका फायदा हो जाए। माशाल्लाह, जवाब इन्होंने बिल्कुल सही दिया है कि इसमें हमारे लिए ये सबक था कि हमारे लिए ये इसलिए कि ये हमारा कि हमारा महज किबला रुख होकर नमाज पढ़ना, ज़बीहा खाना और अकायद की फिक्र ना करना, ये हमारे लिए काफी नहीं है, हमें अकायद की भी फिक्र करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें अकायद की भी फिक्र करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये यही मकसद है कि
कि जिसकी वजह से ये सारी की सारी डिस्कशन हो रही है, यही मकसद है कि जिसकी वजह से हम ये किताब पढ़ रहे हैं, और इस किताब के पढ़ने से पहले भी जब भी हम ये बात करते थे ना, ये ईमान की बात, अकायद की बात, इल्हाद की बात, फितने दज्जाल की बात, जो भी बात, सारे की सारी बात इसी वजह से की जाती थी, और इसी वजह से अभी भी हम कर रहे हैं कि हम जो है ना वो ये ना समझना शुरू कर दें कि हम कुछ दीनी आमाल कर लेने की वजह से हमारा ईमान भी सलामत हो गया है, कुछ दीनी आमाल कर लेने की वजह से या दीनदार बन जाने की वजह से हमारा ईमान भी सलामत हो गया है। बल्कि नहीं, हमारा ईमान तो सलामत उस वक्त होगा जब हमारे अकायद सलामत होंगे, ठीक है। तो अकायद से जो है वो हम बेपरवाही बरतना जो है वो हम खत्म करें, इस वजह से ये सारी की सारी बात हो रही है, ठीक है जी। किसी को अगर ये बात समझ में ना आई हो तो वो जरूर से पूछ करके उसको क्लियर कर ले, क्योंकि जब आपको मकसद ही ना समझ में आए कोई काम करने का, तो फिर उस काम में लगे रहने का खातिर ख्वाह फायदा होता नहीं है। तो खातिर ख्वाह फायदा हासिल करने के लिए मकसद जो है ना वो जानना जरूरी है, ठीक है। नियत, इसी को नियत भी कहते हैं ना भाई, कि किस नियत से हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया था कि मालूम हुआ कि बल्कि मालूम हुआ कि कलमा गो या अहले तिबला, ये दो इस्तेलाही लफ्ज हैं, इनके मफहूम में सिर्फ वो मुसलमान दाखिल हैं जो शायर इस्लाम नमाज वगैरह के पाबंद होने के साथ तमाम मूजबात कुफर और अकायदे बातिला से पाक हों, ठीक है। तो पिछले दिनों आप में से किसी से बात हो रही थी, बल्कि किसी नौजवान से ही बात हो रही थी आप में से, तो वो उनकी बात अच्छी कर रहे थे, बात समझ रहे थे, तो उनको थोड़ा सा इस आजिज ने जरा बैकग्राउंड दिया, ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि आज के जमाने में, वो फरमा रहे थे कि आज के जमाने में दीन के ऊपर स्टैंड ले लेना, आज के जमाने में दीन के ऊपर स्टैंड ले लेना जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। यानी किसी बात के ऊपर इस्तकामत के साथ जम जाना, डट जाना, खड़े हो जाना, तो ये उन नौजवान ने फरमाया कि ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस आजिज ने उनको बात समझाई कि ये खत्म नहीं हो गया है, बल्कि ये शुरू ही नहीं हुआ था। दीन के ऊपर स्टैंड ले लेना, ये सारी बातें जो है ना, ये खत्म नहीं हो गई हैं, बल्कि ये शुरू ही नहीं हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि बात जो है वो अवामुन्नास की हो रही थी, ठीक है। तो वो फरमा रहे थे कि अवामुन्नास के अंदर ये खत्म हो गया है। तो इस फकीर ने कहा कि नहीं, अवामुन्नास के अंदर ये खत्म नहीं हो गया, ये शुरू ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर उनको जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड दे करके इस बात को समझाया कि भाई अवामुन्नास के अंदर से तो दीन जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था ना, अवामुन्नास के अंदर से दीनदारी जो है, जिसको दीनदारी कहा जाता है, तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, या तो बिदआत वाली दीनदारी रह गई थी, ठीक है ना, हलवे पकाना, ठीक है ना, और मीलाद करना, और इस किस्म की जो जिनको बिदात और खराफात वगैरह कहते हैं दीन के नाम के ऊपर जो की जा रही होती हैं, या तो सिर्फ ये वाली दीनदारी रह गई थी अवाम के अंदर, ठीक है, उलमा की बात नहीं हो रही, मदारिस की बात नहीं हो रही, अहले हक मशायख की खानकाहों की बात नहीं हो रही, अवामुन्नास की बात हो रही है। तो या तो ये वाली दीनदारी रह गई थी, या पूरी की पूरी दुनियादारी रह गई थी, पूरी की पूरी दुनियादारी आ चुकी थी, ठीक है ना, दीनदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, पूरी की पूरी दुनियादारी आ चुकी थी। भाई असल दीन तो वही है ना जो सहाबा कराम के वास्ते से हमें मिला है, तो वो वाला दीन अगर नहीं है तो फिर तो दीन नहीं है, ठीक है ना, वो तो एक झूठा और बिदात और खराफात वाला दीन है, जिसके अंदर के जो है वो इस किस्म की देगें पकाना वगैरह टाइप की चीजें होती हैं, वो तो दीन है ही नहीं, ठीक है। तो जो दीन है वो तो खत्म हो गया था ना, सारे की सारी दुनियादारी आ गई थी। अब हुआ ये है, फिनोमिना ये हुआ है कि पिछले 20-25 साल के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदों के की मेहनतों के नतीजे में, अल्लाह ताला असबाब इख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना असबाब, कुछ अपने नेक बंदों को इस्तेमाल किया। भाई ये पहले भी नेक बंदे मौजूद थे, ऐसे नहीं है कि पहले नेक बंदे मौजूद नहीं थे, वो काम नहीं करते थे, ठीक, इस वजह से लोग दीनदार नहीं हो रहे थे, नहीं, पहले और भी ज्यादा नेक मौजूद होते थे, बड़े बड़े अहले उलमा मशायख मौजूद होते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की जो फैसला होता है भाई, आवाम के अंदर दीनी बेदारी नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 20, 25 और 30 साल भी अगर आप करना चाहें तो इतने अरसे के अंदर जो है ना, वो आवाम के अंदर दीनदारी की बहुत बड़ी एक लहर आ गई है। ठीक है, बहुत बड़ी माशाल्लाह, और बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। दीनदारी की लहर आ गई है, दीन की हवाएं चल गई हैं। ठीक है ना, अब जो है वो सारे के सारे माशाल्लाह दीनदार हैं। एथियस्ट और बिल्कुल लिबरल तबका जो कि बिल्कुल एंटी दीन होता है, ये यानी ये ना होने के बराबर रह गया है, ये ना होने के बराबर रह गया ये तबका। ठीक है, तो अब ये तबका जो दीन की तरफ आया है ना, जिसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं और शायद आप भी शामिल होंगे, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं नए दीन, ये नए नए दौलत, ये नौ दौलत ये है ना, दीन की दौलत मिली है, नौ दौलत ये, ठीक है ना। तो ये नौ दौलत ये जो है ना, ये माशाल्लाह दीन की तरफ हम आ तो गए हैं, बहुत सारे दीनी हमने अमाल करने शुरू कर दिए हैं, जाहिरी तौर पर भी हम दीनदार बन गए हैं, दाढ़ियां भी उग गई हैं। पहले दाढ़ी उगाना कोई आसान काम था, बशाय की बड़ी बड़ी मेजर मेहनत जो है वो दाढ़ी उगाने के ऊपर, तो भाई सुन्नत छत सजा लो अपने चेहरे के ऊपर। अभी वो जैवलिन थ्रो में जो है वो जीत कर आए हैं ना, तो रायवंड गए, तो वहां पे जो रायवंड के बुजुर्ग थे उन्होंने उनको देखते ही कहा सुन्नत, चेहरे पे सुन्नत सजा लो। ठीक है ना, तो ये पहले जो है वो हर एक के साथ ये होता था। अब तो ये खाली ये गोल्ड मेडल से आपको सुन्नत सजाने का नसीहत करी ना उन्होंने, पहले तो हर एक के साथ कोई भी सुन्नत नहीं सजाया हुआ होता था चेहरे के ऊपर। ठीक है, अब जो है वो माशाल्लाह बहुत कम चेहरे मिलते हैं जिनके ऊपर सुन्नत नहीं सजी हुई होती है, किसी ना किसी दर्जे में सबके ऊपर ही सजी हुई होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है वो दीनदारी आ गई है, लेकिन इसके साथ जो अकायद की हिफाजत, ईमान की फिक्र और फराइज की हिफाजत, फराइज, ठीक है ना, ये चीज अभी तक हमारे दरमियान जो है वो नहीं आ सकी है, या आई भी है तो बहुत कम आई है। ठीक है, तो अब जो है वो दीनदारी माशाल्लाह, अब जाहिर हर बंदा दीनदार है, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल मंजिल पे पहुंच चुके हैं, हमारे अंदर बेहतरीन किस्म की दीनदारी आ गई है, हम कामयाब हो गए हैं। और ये तो इनफरादी तौर पर दीनदारी आ चुकी, इज्तमाही तौर पर क्या आ चुका, इज्तमाही तौर पर दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए, दुनिया के लेवल पे देखा जाए, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, तो क्या हो चुका है भाई, कोई बताएगा ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या हो चुका है? ठीक है, यानी नेशनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, वहां पर तो जिस तरह हमारे 5 फीट के जिस्म के ऊपर हम इस गुमान में मुब्तला हो चुके हैं कि दीन गालिब आ चुका है, तो उसी तरीके से ग्लोबल लेवल पर भी दीन गालिब आ चुका है। ठीक है, क्या लिखा आपने, घमदई गढ़ चुके हैं, झंडे गढ़ चुके हैं, हाँ झंडे गढ़ चुके हैं बोले, या दीन गालिब आ चुका है बोले, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो अब ये जो गलतफहमी हमें लग चुकी है ना इस वक्त कि दीन गालिब आ चुका है, चाहे वो हमारे फर्द के ऊपर हो, चाहे जो है वो हमारे मुल्क के ऊपर हो, चाहे वो हमारी दुनिया के ऊपर हो, तो ये इस गलतफहमी से जो है ना वो हमें निकलने की जरूरत है कि नहीं अभी गालिब वालिब कोई नहीं आया है, अभी बहुत मेहनत बाकी है, और वो मेहनत भी बड़ी बुनियादी, बड़ी फंडामेंटल लेवल की मेहनत बाकी है अभी। ठीक है, वो मेहनत क्या है कि ईमान जैसा, जैसे सहाबा कराम जैसा ईमान लेकर के आए थे ना, तो वैसा ईमान भी हमें लेकर के आना है, क्योंकि उसके अलावा कोई ईमान काबिल कबूल ही नहीं है। और हमने जो है वो नवाफिल में जिंदगी गुजार देने के बजाय जो है वो फराइज की मेहनत करनी है। बहरहाल, तो फरमाते हैं कि अहले क़िबले का ये मफहूम तमाम उलमाए उम्मत की किताब, इसी वजह से हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं, तो अहले क़िबले का ये मफहूम तमाम उलमाए उम्मत की किताबों में बसराहत व वजाहत मौजूद है। ज़ेल में चंद अक़वाल आइमा इस्लाम के पेश किए जाते हैं, जिनसे दो चीज़ों की शहादत पेश करना मकसूद है। नंबर 1, अहले क़िबले का सही मफहूम क्या है, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कि अहले क़िबले का सही मफहूम क्या है। दूसरा, असल मौजू बहस पर शहादत कि इस्लाम के कतई और यकीनी अहकाम में कुरान सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित शुदा मफहूम के खिलाफ कोई मफहूम करार देना भी तकजीब रसूल के हुक्म में है, और ऐसी तकजीब को जंदका व इल्हाद कहा जाता है। ठीक है, जो साबित शुदा कतई और यकीनी अहकाम है ना, तो उनसे हट करके कोई मफहूम बना लेना, ये जंदका और इल्हाद कहलाता है, और ये तकजीब रसूल में दाखिल है। आगे इन्होंने जो एक नकल किया, कौल मुहक्किक इब्न अमीर अल हाज रहमतुल्लाह अलैह, जो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न हमाम रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शागिर्द और मुहक्किक हैं, यानी रिसर्चर हैं, तहकीक करने वाले हमारे अकाबरीन में से हैं, वो अपनी शरा तहरीरुल उसूल में अहल क़िबला की तारीफ करते हुए लिखते हैं, और शायर इसके इसकास के हिसाब से जो है वो हम तर्जुमा ही पढ़ रहे हैं, कि अहल क़िबला वो है जो मुवाफिक हो तमाम ज़रूरियात इस्लाम के, जैसे आलम का हुदूस, ठीक है, कि आलम जो है वो पहले मौजूद नहीं था फिर वो वजूद में आया, ठीक है ना, ये हादिस है, यानी कोई चीज पहले नहीं थी फिर वो वजूद, जैसे हादसा वजूद में आता है, हादसा एक्सीडेंट, ये पहले तो नहीं था ना, एकदम से कुछ हो जाता है फिर एक्सीडेंट वजूद में आ जाता है, दो गाड़ियां टकरा जाती हैं और वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो हुदूस, तो आलम का हुदूस और हशर अजसाद, ठीक है, यानी जरूरियात दीन में ये चीजें भी शामिल है, आलम का हुदूस, ये इसका अकीदा रखना कि भाई आलम पहले नहीं था, आलम पहले नहीं था, यूनिवर्स पहले नहीं थी, फिर अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, ठीक है ना, हमेशा से यूनिवर्स नहीं थी, हश्र अजसाद, ठीक है, कि जिस्मों के ऊपर जो है ना ये कयामत कायम होगी उनका, यानी कयामत के दिन जो है वो, ये सिर्फ ये नहीं है कि बस ये एक इंटेलेक्चुअल किस्म की और इमेजिनरी किस्म की चीज है, बल्कि नहीं, ये एक फिजिकल चीज है, कयामत का कायम होना ये एक फिजिकल चीज है, जिस्मों के ऊपर ये कायम होगी, इसी तरह इस तरह पर कि इससे कोई चीज मूजबात कुफर में से सादर ना हो, यानी उस शख्स से अहले क़िबला वो है जिससे कोई चीज मूजबात कुफर में से सादर ना हो, मसलन कि उसका ऐसा एतकाद हो जो मुफ़्ज़ी हो हक आला के साथ दूसरे खुदा के मानने को, क्या मतलब, मुफ़्ज़ी का मतलब होता है कि समथिंग दैट लीड्स टू अनदर थिंग, किसी नतीजे पर पहुंचाने वाली बात, आप कोई ऐसी बात करना शुरू कर दें जिसका कंक्लूजन जो है ना वो कुछ निकलता हो, तो ऐसी चीज को मुफजी कहते हैं, ठीक है, तो इसका कोई ऐसा अकीदा जो कि ये नतीजा कंक्लूड करे कि अल्लाह ताला के साथ दूसरे खुदा भी होते हैं, ठीक है ना, यानी जुबान क्या क्या मतलब इसका कहने का, कि सराहतन नहीं कह रहा कि और खुदा भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात कर रहा है कि जिससे कि ये नतीजा निकलता है कि भाई और खुदा भी, ये और खुदाओं को भी मानता है, और खुदा ताला के किसी शख्स में हुलूल करने को, ठीक है ना, कोई ऐसा इसका अकीदा हो कि खुदा जो है वो दुनिया में आकर के नाउज बिल्ला अल्लाह ताला किसी इंसान के अंदर हुलूल कर गए, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो नेशन ऑफ इस्लाम रिलीजन जो है वो फाउंड किया गया ना नेशन ऑफ इस्लाम के नाम से, ठीक है ना, वो देखें इस्लाम का नाम लिया जा रहा है और इस्लाम की बात की जा रही है और नाम भी क्या रखा है, नेशन ऑफ इस्लाम, लेकिन ये किस अकीदे की बुनियाद पर था कि खुदा जो है ना वो डब्ल्यू डी फॉर्ड एक आदमी था, उसकी शक्ल में दुनिया में आ गया था खुदा नऊज बिल्ला, ठीक है ना, और डब्ल्यू डी फॉर्ड साहब जो है ना वो दुनिया के अंदर आए, कुछ अरसा उन्होंने अपना जो है वो तजल्लियात दिखाई, और फिर उसके बाद अपना रसूल अलाइजा मोहम्मद एक नाम बंदा था अफ्रीकन अमेरिकन, उस अलाइजा मोहम्मद को अपना रसूल बनाया, और फिर रसूल बनाने के बाद वो गायब हो गए नाउज बिल्ला, ठीक है ना, खुदा साहब जो है वो गायब हो गए डब्ल्यू डी फाड़ की शक्ल में जो आ गए थे, और फिर उन्होंने अलाइजा मोहम्मद को अपना खलीफा बना करके, अपना रसूल बना करके दुनिया में छोड़ दिया, अब अलाइजा मोहम्मद साहब जो है वो उन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम बनाई, और नेशन ऑफ इस्लाम के तहत जो है वो आज भी जो है वो हरकतें करे चले जा रहे हैं वो लोग, वो तो बंदा तो मर गया अब उनके, बहरहाल बजायर ये भी कहा जाता है कि अब उन्होंने तौबा कर ली है और वो ट्रेडिशन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन पता नहीं ऊपर ऊपर से तो भी तौबा की, अंदर अंदर अजीब और गरीब किस्म के हालात वही सारे के सारे चल रहे हैं, अल्लाह आलम, बहरहाल तो इस किस्म के अकीदा रखने वाला जो है ना ये अहले क़िबला नहीं होता, ठीक है, बेशक वो काबतुल्ला भी आ रहा हो और काबतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ रहा हो, या नबुवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार को, ठीक है, यानी जो कोई ऐसा अकीदा हो जो कि मुफजी हो नबी अलैहिस्सलाम के इनकार को, कि नबुवत के इनकार को, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजम्मत, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिख़फ़ाफ़ को, ठीक है, कि यानी उसके जहन में अगर कोई ऐसा अकीदा है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की मजम्मत का सबब बनता है, नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की जो है ना वो, यानी बुरा भला कहने का जो है वो सबब बनता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिख़फ़ाफ़ का सबब बनता है, استخفاف کا مطلب خفی سمجھنا، یعنی توہین کرنا، تذلیل کرنا کسی کی، کسی کی تحقیر کرنا، اس کو استخفاف کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، تذلیل، تحقیر وغیرہ کرنے کا سبب بنتا ہو اس کا عقیدہ. اور اسی طرح کی اور باتیں، یہاں تک کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ اہل قبلہ کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کرنے کی حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے. ہاں، اگر گناہ سے مراد کفر کے علاوہ لیا جائے، جیسے کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ سبکی رحمۃ اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، تو عموم مراد ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی عقیدے کے جو گناہ ہیں نا، تو وہ اگر ہوں گے تو یہ شخص اہل قبلہ والا اہل قبلہ نہیں کہلائے گا. ہاں، عقیدے کے گناہوں کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے اس کے، جیسے کہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کر رہا ہو نا، کفر سے کم درجے کا، بڑے سے بڑا کوئی گناہ کر رہا ہو، تو اس کو جو ہے وہ کافر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ بنیادی عقائد میں سے اہل سنہ والجماعت کے کہ گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت نے یعنی شہادت کے طور پر ایک بڑے امام کی جو ہے وہ عبارت نقل فرمائی یہاں پہ. پھر اس کے بعد جو دوسری عبارت ہے وہ ہم سکپ کر رہے ہیں، وہی جو پہلے بتایا تھا کہ کچھ عبارتیں جو ہیں وہ اچھی خاصی کمپلیکیٹڈ ہیں، حتیٰ کہ ان کا اردو ترجمہ بھی اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں. حضرت تو اپنے شہادت کے طور پر، اپنے دلیل کے طور پر جو ہے وہ اس طرح کی بہت ساری عبارت نقل کر رہے ہیں. البتہ اگلے صفحے کے اوپر جو عبارت ہے وہ پھر ہم نے پڑھنی ہے، جو کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فقہ اکبر کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں فرمایا، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین پر متفق ہیں، جیسے حدوث عالم. انہوں نے بھی حدوث عالم والی بات، اس زمانے میں کوئی چل رہا ہوگا شاید کہ لوگ جو ہیں وہ حدوث عالم کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئے کہ بھئی عالم جو ہے وہ حدوث نہیں ہے، حادث نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی کوئی باتیں ہو سکتے ہیں چل رہی ہیں، اسی وجہ سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر تصریح کی اس بات کی کہ جیسے حدوث عالم اور حشر و نشر اور علم اللہ بالجزئیات وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تمام جزئیات کے ساتھ، تمام یعنی اس کے ڈیٹیلز کے ساتھ. ٹھیک ہے، بس جو شخص تمام عمر طاعات و عبادات کا پابند ہونے کے باوجود قدم عالم اور نفی حشر، یا قدم عالم مطلب کہ عالم ہمیشہ ہمیشہ سے قدیم ہے، عالم نہیں، عالم قدیم نہیں ہے، عالم تو حادث ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص ساری عمر طاعات اور عبادات کا پابند ہونے کے باوجود قدم عالم اور نفی حشر یا نفی علم اللہ بالجزیات کا معتقد ہو، وہ اہل قبلہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ اصل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہماری پوری کی پوری ڈسکشن کا مقصود بھی یہی ہے کہ عبادتیں کر رہا ہے، طاعات کر رہا ہے، یعنی نیکیاں کرے چلے جا رہا ہے، عبادتیں بھی کرے چلے جا رہا ہے، لیکن ان بنیادی عقائد میں سے کسی کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے، تو وہ اہل قبلہ نہیں ہے. اور مراد اہل قبلہ سے اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی تکفیر اس وقت تک نہ کی جائے گی جب تک علامات کفر میں سے کوئی چیز اس میں نہ پائی جائے، اور جب تک اس سے موجبات کفر میں سے کوئی بات سرزد نہ ہو. ٹھیک ہے، وہی بات پھر یہاں پر بھی ریپیٹ ہو رہی ہے، تو اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کسی نے یہاں پہ ایک سوال بھیجا ہے شاید، کہ مطلب ایک انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، لیکن گناہ کو ٹھیک سمجھ کر کرتا رہے تو یہ کفر ہے. جی ٹھیک ہے نا، گناہ وہ والا گناہ جو کہ قطعی دلائل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے گناہ کو جو ہے نا یہ ٹھیک سمجھ کے کرتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہی ساری کی ساری بحث ہے. اور کسی کلاس میں غالباً بات ہوئی تھی یا کسی اور مجلس میں بات ہوئی تھی کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے سر ورق کے اوپر جو آیت نقل کری ہے نا، وہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں کس مقام پر موجود ہے، یہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یہاں پر جو यानी जो बात हो रही है ना वो है अल्लाह ताला के अहकामात की नफी करना, ठीक है। यानी ये आयत कुरान मजीद में कहाँ पर है, जहां पर के अल्लाह ताला ने अपने हुक्मों का जिक्र किया है, हुक्मों का जिक्र किया है, ठीक है। तो उन हुक्मों का जिक्र करके फिर अल्लाह ताला ने ये वाली आयत नाजिल करी, वो मैं यकफुर बिल ईमान फकत हबित अमलु, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट भी जो है ना वो इस आयत का ये बताता है, ठीक है। जैसे पर्दे का इनकार, पर्दा ये फर्ज है, पर्दे के जो है ना मसला ये है कि पर्दे का इनकार कि भाई पर्दा है ही नहीं, ठीक है, पर्दे नाम की कोई चीज नहीं है शरीयत के अंदर, तो ये तो फिर इसी कैटेगरी की बात हो जाएगी ना। अब उसके ऊपर ये कि भाई पर्दा कैसे करना है, पर्दे की तफसील क्या है, तो इसके अंदर फिर उलमा में थोड़ा बहुत जो है वो इख्तलाफ रहा है, ठीक है ना। और वो फिर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, फिर वो उसमें दूसरी बातें आ जाती हैं कि भाई दलील के तौर पर जो है ना फिर वो फितरत की बात आती है, और उसके अंदर जो है वो और अकली दलाइल शामिल होते हैं कि भाई पर्दा असल पे पर्दा क्या है, और पर्दे का जो है वो क्या
सर वो तो
तरीका
खुद
जो
ही
है वो
बता दिए
बेहतरीन
भाई,
तरीका
पार्टी
है
जमात
वगैरह
तैयार
वगैरह।
हो गई।
आप म्यूट कर लें अगर, ठीक है। तो वो फिर पर्दे की तफसीलात हैं, ठीक है। तो उनके बारे में फिर उलमा के दरमियान डिस्कशन है कि भी किस किस चीज का पर्दा है और कैसे कैसे पर्दा है, ठीक है। तो उससे फिर जो है ना वो उसमें फिर वो नहीं होगा कि जी बंदा उसका यानी उलमा से यानी उलमा में जो इल्मी इख्तलाफ होता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो अगर कोई इल्मी इख्तलाफ करते हैं तो वो उससे वो काफिर नहीं हो जाते, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दा कि भाई पर्दा तो शरीयत में है ही नहीं, हिजाब तो औरतों के लिए है ही नहीं, ठीक है ना। तो भाई ये तो कुरान मजीद के आयात का इनकार हो गया ना, ठीक है ना। और उम्मत का इत्तेफाक जो है वो हो गया कि हाँ भाई पर्दा है, ये इट्स नॉट द सेम फॉर मेन एंड वेमेन, यानी औरतों के लिए पर्दा है, मर्दों के लिए पर्दा नहीं है। या ये कि कोई कहे कि नहीं जैसा मर्दों का मामला है वैसे ही औरतों का मामला है, ठीक है ना। कोई फर्क है ही नहीं मर्दों और औरतों के लिबास में, या मर्दों औरतों के जो है वो आपस यानी अपने आप को कैरी करने में कोई फर्क नहीं है, बस जिस तरह मर्द हैं वैसे के वैसे ही औरतें, ये होगा मुतलकन पर्दे का इनकार, ठीक है। तो उसके बारे में फिर आप काबरीन से पूछ लीजिए कि ऐसा शख्स जो है ना फिर वो क्या होगा, इस्लाम में दाखिल होगा कि इस्लाम से खारिज होगा। बाकी ये किसी और ने पूछा कि इल्मुल्लाह बिल जुज़ियात का मानी क्या है, इल्मुल्लाह बिल जुज़ियात का मानी क्या है, आप बता दें, अगर आप ही बता दें या आप में से ही कोई बता दें, इल्मुल्लाह बिल जुज़ियात का मानी क्या है। इसके ऊपर कुदरतन बच्चों की क्लास तो अब उसको कहना भी नहीं चाहिए, उसमें इतनी बड़ी बड़ी लोगों की बातें होनी शुरू हो गई हैं। सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाली जो क्लास, बल्कि अब जो सीरत सहाबा वाली क्लास बन गई है, तो उसके अंदर इसके ऊपर बात हुई थी, इल्मुल्लाह बिल जुज़ियात का मानी क्या है, ठीक है। तो इल्मुल्लाह बिल जुज़ियात का मानी क्या है कि भाई इल्मुल्लाह, ठीक है, अल्लाह के बारे में इल्म तमाम जुज़ियात के साथ, ठीक है भाई। अल्लाह के बारे में इल्म तो ईसाई के पास भी है, ठीक है ना। अल्लाह अल्लाह के बारे में इल्म तो यहूदी के पास भी है, हिंदू के पास भी है कि भाई कोई अल्लाह है, कोई खालिक है, कोई मालिक है, वही बात, कोई नई बात नहीं कह रहा, कोई वही बात कि भाई खालिक है, मालिक है, राजिक है। ये मुशरिकीन मक्का भी ये सारी बातें मानते थे, लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम ने जुज़ियात बताई अल्लाह ताला के बारे में ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद लैसा कमिस्लिही शै लैसा कमिस्लिही शै, कोई चीज जो है वो उसके जैसी नहीं है, कोई शय उसके जैसी नहीं है। ये तफसीलात हैं फिर अल्लाह ताला के बारे में, ठीक है ना। जो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारे में बताई है तफसीलात, अल्लाह का वैसा इल्म रखना, अल्लाह के बारे में वैसा जहन के अंदर गुमान रखना, ऐसा नहीं कि भाई अल्लाह है और भाई क्रिश्चियन भी अल्लाह को मानता है, यहूदी भी मानता है, बाकी सारे भी अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन वो बिल जुज़ियात अल्लाह ताला को जैसी जुज़ियात नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है वैसे नहीं मानते। कोई बेटा कहता है अल्लाह का, कोई कहता है अल्लाह की बेटियां हैं, कोई कहता है अल्लाह ताला के शरीक हैं, कोई कहता है अल्लाह ताला के मालिक हैं, कोई कहता है अल्लाह ताला के हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, नऊज़ बिल्ला, राइट। अल्लाह ताला के हाथ नहीं बनते हुए भाई, अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है, ठीक है। तो सिर्फ अल्लाह का इल्म होना कि भाई अल्लाह है, ये नहीं, बिल जुज़ियात। ठीक है ना, एग्री करता हूँ नबी अलैहिस्सलाम की हर बात से। तो बहरहाल अहले कबीला के जो है ना वो हजरत ने तफसील के लिए एक और इबारत नकल फरमा दी। फिर उसके बाद एक और इबारत भी आपको पढ़ के सुनानी थी, क्योंकि कोई ऐसी बात अहम बात होती है जब भी, फिर वो इबारत मुश्किल होने के बावजूद आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो अगली सफ़े के ऊपर पेज नंबर 54 के ऊपर जो इबारत है वो है हज़रत फखरुल इस्लाम बजदवी रहमतुल्लाह अलैह की कशफुल उसूल बाबुल इजमा जिल्द 3 सफ़ा 238 में, नीज इमाम सैफुद्दीन आमदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम में, और गायत तहकीक शरा उसूल हिसामी में है ये वाली इबारत। ठीक है, तो इस इबारत का तर्जुमा क्या बनता है कि अगर गुलू किया अपनी ख्वाहिशात नफसानिया में हत्ता के वाजिब हो गई उसकी तकफीर इसकी वजह से, अपनी ख्वाहिशात नफसानिया में ना उसने वो इतना हद से आगे बढ़ गया, गुलू का मतलब होता है एक्सेस कर जाना, ठीक है ना, हद से आगे बढ़ जाना किसी मामले में, जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है कि जी लोग जो है ना वो अपने पीरों के बारे में गुलू करना शुरू हो जाते, ठीक है ना, कि हमारे पीर साहब तो ओ उनके उनको तो वो तो यानी आलम बाला की सैरें करते रहते हैं, और जो उनके साथ बैत करता है उसको भी जो है वो सैरें करवा देते हैं, और उनकी जुबान से तो हक टपकता है और कभी वो गलत बात उनकी जुबान से निकल ही नहीं सकती है, और उनको तो इल्म गैब हासिल है, इल्म गैब, और उनको तो फलाना, ये सब गुलू करना कहलाता है। ठीक है, तो ये गुलू जो है वो अपनी ख्वाहिशात नफसानिया के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, कोई इतना आगे बढ़ जाए, वरना ख्वाहिशात नफसानिया जो जो शरीयत की हदूद में रहें तो उनका मसला नहीं, उनका मसला नहीं होता, जन्नत की खबरें लाते हैं पीर साहब, ठीक है, इस वक्त जन्नत में फलाना चला गया, उस वक्त जन्नत में फलाना चला गया और वगैरह उस तरह की चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि अगर गुलू की अपनी ख्वाहिशात नफसानिया में हत्ता के वाजिब हो गई उसकी तकफीर उसकी वजह से, इजमा में इसके खिलाफ या मुखालफत का एतबार ना होगा। तो भाई अब तकफीर उसके ऊपर वाजिब हो गई है, तो अब इजमा में इसके खिलाफ या मुखालफत का एतबार नहीं होगा, यानी उलमा इस बात पर मुतफिक नहीं है कि नहीं उसकी तकफीर नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी तकफीर की जाएगी क्योंकि उसके ऊपर वाजिब हो गई तकफीर, अब किसी वजह से वाजिब हुई है जो कि पीछे हम सारी वजूहत पढ़ चुके हैं, अगरचे वो किबले की तरफ नमाज पढ़ता हो। ये असल में हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट, अगर पिछली इबारत ना भी समझ में आई हो तो बेसिकली असल में हमारे लिए रेलिवेंट बात यही है कि अगरचे वो किबले की तरफ नमाज पढ़ता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो, यानी वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, ये नहीं कि उसको पता है कि मैं तो नबी अलैहिस्सलाम की तकजीब करता हूँ इस वजह से मैं तो काफिर हूँ, तो वो जो भी कर रहा है ना वो यानी जिसको कहते हैं ना उल्लू बनाने के लिए, तो मुसलमानों के साथ धोखा करने के लिए वो बात कर रहा है, नहीं वो मुसलमानों को धोखा नहीं दे रहा, वो तो जेन्युइनली समझता है, इनोसेंटली समझता है कि वो खुद भी जो कर रहा है वो इस्लाम ही है, वो इस्लाम ही समझ करके ये सारे काम कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये इबारत जो है ना ये बड़ी अहम है कि अगरचे वो अपने आप को मुसलमान समझता हो, क्योंकि उम्मत क़िबले की तरफ नमाज पढ़ने वालों का नाम नहीं है बल्कि मोमिनीन का नाम है। उम्मत किस किसका नाम है, बड़ी अहम इबारत है ये, बड़ी अहम अल्फाज हैं ये, उम्मत क़िबले की तरफ नमाज पढ़ने वालों का नाम नहीं है, यानी ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो सारे सारे लोग मुसलमान हैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल हैं जो कि काबतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हो, ये डेफिनेशन है ही नहीं ईमान वालों की, ठीक है ना, कभी आपने सुनी ऐसी डेफिनेशन कि वो लोग जो कि काबतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं वो मुसलमान होते हैं, है ना, हमने तो कभी नहीं सुनी, आपने सुनी है कभी, ठीक है, तो फरमा रहे हैं कि उम्मत क़िबले की तरफ नमाज पढ़ने वालों का नाम नहीं है बल्कि मोमिनीन का नाम है, और वो काफिर है अगरचे उसको अपने काफिर होने का इल्म ना हो, ठीक है ना, वो काफिर है मतलब कि जिसके ऊपर वही जरूरियात दीन का की मुखालफत करना, ये सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से उसके ऊपर जब कुफर उसकी तकफीर वाजिब हो गई ना तो अब वो ईमान वालों में दाखिल नहीं होगा, ठीक है, बेशक उसको अपने कुफर का इल्म भी ना हो, ठीक है, तो ये खतरनाक बात है ना हमारे लिए, ठीक है, कि भाई इल्म ना होना जो है ना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ईमान के मामले में, कम से कम इल्म ना होना ये एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से तो फिर ये सारी की सारी मेहनत की जा रही है कि भाई ईमान के बारे में हम इतने फिक्रमंद हो जाएं कि हम फूक फूक करके फिर कदम रखें, हम कोई ऐसी तरफ हो जाने से जो है ना वो बहुत ही अपने आप को बचाएं, अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह अगर मुझे, अगर से मुझे इल्म नहीं है लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप मुझे इल्म अता फरमा दें और मेरी हिफाजत फरमा दें, मेरी औलाद की आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा दें। ठीक है, फिक्र होगी तो फिर ये दुआएं भी मांगेंगे। अच्छा, आगे अगली इबारत रद्दुल मुख्तार बाबुल इमामा में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने बहवाला शरह तहरीरुल उसूल इब्ने हम्माम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जिसका तर्जुमा बनता है कि जो शख्स जरूरियात इस्लाम का मुखालिफ हो, इसके कुफर में कोई इख्तलाफ नहीं, अगरचे वो अहले क़िबला में से हो और तमाम उम्र ताआत पर पाबंद रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हजरत ने अहले क़िबला का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, वो इस वजह से नहीं है कि वो उन अहले क़िबला में से है जिनका के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, बल्कि जाहिरी तौर पर अहले क़िबला में से हो और तमाम उम्र ताआत का पाबंद रहे। तमाम उम्र जो है ना वो इबादतें कर रहा है, करता रहे तमाम उम्र, ठीक है, लेकिन जरूरियात इस्लाम का मुखालिफ है तो उसके कुफ्र में कोई इख्तलाफ नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका एक बड़ा खतरनाक और खौफनाक मतलब जो है ना वो हमारे लिए ये बनता है कि देखें, ताआत का पाबंद सारी उम्र रहना ये अल्लाह की तौफीक के बगैर तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह की तौफीक के बगैर के बंदा कोई इबादत कर सकता है, और वो भी सारी उम्र जो है वो इबादतों का पाबंद रह सकता है? हरगिज नहीं। अल्लाह की तौफीक के बगैर ये काम नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो निफाक का शिकार है, जंदीक है, तो फिर उसकी ये ताआत जो है वो तौफीक तो मिल रही है, तभी तो वो कर रहा है, लेकिन क्या वो कबूल भी है? नहीं, वो कबूल नहीं है, वो मकबूल नहीं है अल्लाह ताला के यहाँ। ठीक है, तो तौफीक का मिल जाना एक चीज होती है और कबूलियत का मिल जाना ये एक अलग चीज होती है। इसी वजह से ईमान वाला जो है ना वो कबूलियत के लिए हर वक्त करता रहता है और हर वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला से मांगता रहता है कि अल्लाह कबूल भी फरमा ले, तौफीक भी मांगता है अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, लेकिन कबूलियत जो है ना वो उससे बढ़ करके। इस वजह से हमारे यहाँ उसूल क्या है कि कम की तौफीक मिल रही हो लेकिन कबूलियत हो रही, ये ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि बहुत सारे अमाल की तौफीक मिल रही है लेकिन कबूलियत नहीं मिल रही। ठीक है, तो ऐसी जिसको बात ये वाली बात जिसको समझ में आ जाती है तो फिर उसके अंदर जो है ना वो अकड़ और तकबर और इस किस्म की जो रूहानी बीमारियां हैं वो फिर आ ही नहीं सकती उसके अंदर। ठीक है, उसको तो हर वक्त फिक्र पड़ी हुई है कि पता नहीं मैंने किधर जाना है, मरना मैंने ईमान पे मरना है कि मैंने कुफर पे मरना है, यही मुझे अभी तक नहीं पता, तो मैंने खुश किस बात पे हो रहा हूँ फिर मैं। ठीक है, तो ये एक और इबारत हमने पढ़ ली, ये कोई सवाल है? अच्छा, इन्होंने लिखा है कि इट इज हिज फॉल्ट दैट ही डिड नॉट आस्क। इट इज हिज फॉल्ट दैट ही डिड नॉट सीक, दैट ही डिड नॉट सीक। सीख का जो लफ्ज है ना वो होता है कि यानी सच की जुस्तजू उसने नहीं करी। ठीक है ना, ये मसला है कि भाई उसने उसको पता भी नहीं है कि वो काफिर है, तो उसने हक की जुस्तजू क्यों नहीं करी? ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना वो अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला का वादा भी जो है ना वो भी यानी बिल्कुल यानी आ जाता है पिक्चर के अंदर कि अल्लाह ताला ने ना ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, लनहदियन्नहुम सुबुलना, जरूर बिल जरूर हम उसको अपनी तरफ आने का रास्ता उसके लिए हमवार करेंगे। ठीक है ना, तो अब अल्लाह ताला ने इसकी शर्त क्या बनाई? जाहदू फीना, ठीक है ना, अल्लाह को पाने की जदोजहद जो है ना वो जो भी करेगा तो अल्लाह ताला उसको गुमराह नहीं करेगा बल्कि अपने तक आने का रास्ता उसके लिए हमवार कर देगा। तो अब अगर हमें अल्लाह ताला के इस वादे के ऊपर एतमाद है तो फिर हमें तो बस यही समझना है ना कि भाई इसका मतलब क्या है कि इसने जद्दोजहद करी नहीं, इसने कोशिश करी ही नहीं सच तक पहुंचने की। अगर ये कोशिश करता तो अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता ना। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कि ये तो फी ना यानी अल्लाह की खातिर जो है वो कुछ काम करे, कुछ मेहनत करे, कुछ जहनी जद्दोजहद भी तो होती है ना। एक जरूरी तो नहीं है कि आप हाथ पैर मारें, आप जो है वो उठक बैठक करें, आप जो है वो बहुत मेहनत और मशक्कत वाले काम करें, एक जहनी जद्दोजहद भी तो होती है ना जिसको फिक्र कहते हैं। जिसको सोच कहते हैं, ठीक है ना। तो जहनी फिक्र यानी अल्लाह, कोई शख्स जो है वो जहनी तौर पर जो है वो सच की तलाश में है, अल्लाह ताला से उसकी दुआ मांग रहा है कि ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, तू तूने जिसने मुझे बनाया है, जिसको मैं हर वक्त देखता हूँ कि तू तू ही काम कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ लेकिन काम हो जाते हैं, तो तू ही है जो कि ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब तू मुझे हक की तरफ, अब तू मुझे हक की तरफ पहुंचा दे, ठीक है ना। तो जो ये अल्लाह ताला को दिखाएगा कि मुझे मुझे है हक की तलब, तो अल्लाह ताला उसको हक की तरफ लेके जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसको कुफ्र के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। तो यही कसूर होता है हमारा कि हम हक की तमन्ना ही नहीं रखते हैं, हम बस चाहते हैं कि बस मेरी ख्वाहिशात पूरी होती रहें और मुझे जो है ना मेरे मुंह के अंदर जो है वो चमचा पड़ा रहे, चांदी का चमचा पड़ा रहे या सोने का चमचा पड़ा रहे, और लोग मुझे स्पून फीड करते रहें और मैं खुश होता रहूं, और फिर उसके बाद मैं चिल करता रहूं और मैं जो हूँ वो तफरी करता रहूं और हंसी मजाक करता रहूं, हल्ला गुल्ला जो भी आप नाम इसके लिए लेना चाहें मैं करता रहूं, और बस दुनिया जो है ना वो मेरे हिसाब से मेरे इर्द गिर्द चलती रहे। जिसकी ये एटीट्यूड है, जिसकी ये सोच है, जिसकी ये फिक्र है, तो उसको क्यों भाई अल्लाह ताला जाहलना दिया ना हम सुबुलना, उसके ऊपर तो फिर ये वादा पूरा नहीं होता ना, ठीक है। तो यही सारा का सारा मसला है। बहरहाल टाइम जो है वो हो चुका है, तो अब जो है वो हमारा एक दो इबारत और पढ़ के फिर अगले पर जाना था, वो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के या अगले जो दर्स होगा इंशाल्लाह उसके अंदर अगली इबारत पढ़ेंगे। अगर कोई और सवाल है या कॉमेंट किसी के जाएंगे। वॉट आर द साइंस ऑफ कबूलियत, वॉट आर द साइंस ऑफ कबूलियत, कबूलियत की साइन क्या है, क्या अलामत है कबूलियत, ठीक है। अलामत कबूलियत जो है वो वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है, ठीक है, कि मोमिन की अलामत क्या बताई नबी अलैहिस्सलाम ने, अलमोमिनु अल ईमानु, यानी मोमिन का जो ईमान होता है वो बैनर रजा एवल खौफ, बैनर रजा एवल खौफ, ठीक है ना। यानी जो ईमान वाला होता है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान में रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर काफी सारी तफसीर अभी खवातीन की एक क्लास के अंदर भी हुई थी, इसका मतलब क्या है, हमारे मशायख ने, हमारे हजरत ने बल्कि अपने बयानात के अंदर बड़े अच्छे से इसको समझाया हुआ है, इसका मतलब क्या है ना बैनर रजा एवल खौफ का। तो जो इन दोनों हालात में रहता है ना, खौफ में भी रहता है और साथ साथ जो है ना वो उम्मीद के अंदर भी रहता है, तो ये अलामत है ईमान की, और ईमान ही कबूलियत की शर्त, ईमान ही कबूलियत की शर्त, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह आपने खुद ही लिख भी दिया था, मैंने अभी देखा, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ आएगी तो आपकी फतह फरमाएगा। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله.